हमेशा के लिए मेरी बनने के लिए तुम्हें पहले मुझसे दूर जाना होगा। उसके इतना कहते ही आन्या ने सर उठाकर उसे देखते हुए सवाल किया, क्यों? मैं नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़कर कहीं भी। इतनी मुश्किल से मुझे तुम मिले हो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आन्या वापस उसके सीने से जा लगी और अपनी बाहों को उसकी पीठ पर कस दिया। वो अन्वय से नाराज हो गई थी। अन्वय ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुद से दूर नहीं कर रहा हूँ, बस एक दो दिन की बात है। तुम अपने परिवार के साथ रहना, उसके बाद मैं आऊँगा हाँ बारात लेकर तुमसे शादी करने, उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ तुम्हारे मम्मी पापा की मर्जी से हो। वे कल को ये ना कहें कि तुमने भाग कर शादी की। मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हारे बारे में गलत सोचे। वैसे भी वे तुम्हारी शादी करके तुम्हें दूसरे घर भेजना चाहते थे, तो मैं माँ पापा और भैया के साथ आऊँगा। उनसे इज्जत के साथ तुम्हारा हाथ मांगने मैं खुद तुम्हें छोड़ने चलूँगा। इस बार वे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अमानत बनकर उनके पास रहोगी, जिसे मैं समाज के सामने विवाह के बंधन में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगा। बस एक दो दिन की बात है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास, वे फिर से मुझे मारेंगे। मैं कभी हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। मुझे नहीं जाना है कहीं भी, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, आन्या ने जिद करते हुए कहा और सर उठाकर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में आई नमी ये बताने को काफी थी कि वो डर रही है उससे दूर जाने से, वापस उस जगह जाने से जहां उसे सिर्फ दर्द ही मिला है। अन्वय ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, और तुम वहां अकेली नहीं रहोगी। जुली हर पल तुम्हारे साथ रहेगी, वे लोग दोबारा तुम्हें छू भी नहीं सकेंगे। फिर बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं जल्दी से जल्दी तुमसे शादी करके तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। उसके बाद तुम्हें कभी दोबारा उस जगह जाने नहीं दूंगा, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वे शादी के लिए नहीं माने तो मैं अपने साथ तुम्हें वापस ले आऊंगा। हम साथ रहेंगे, कोई हमें अब जुदा नहीं कर सकेगा। पक्का? अगर वे नहीं माने तो तुम मुझे अपने साथ ले आओगे? वहाँ छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? आन्या की आंखों में अब भी डर मौजूद था। अन्वय ने हाँ में सर हिलाया, फिर उसके माथे को प्यार से चूमते हुए वापस उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद अन्वय ने उसे गले लगाए हुए ही कहा, तुम्हें सोना नहीं है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? नींद नहीं आ रही थी मुझे, आन्या ने उस पर अपनी बाहों को कसते हुए कहा। उसके इतना कहते ही अन्वय ने उसे खुद से अलग किया तो आन्या सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अन्वय ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर अंदर की तरफ जाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। आन्या ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी गर्दन पर अपनी बाहों को लपेटते हुए उसने उसके सीने पर अपना सर टिका दिया। अन्वय ने अंदर जाकर उसे लेटाया और खुद उसके पास अधलेटा होकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। आन्या कुछ देर खामोशी से आंखें बंद किए लेटी रही, फिर आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, कब छोड़ने जाओगे मुझे वापस वहाँ? कल शाम को। सुबह काम है तो शाम को जाएंगे, साथ में माँ पापा और भैया भी चलेंगे। हमारे रिश्ते की बात करने तो पहले भैया से भी बात करनी है, इसलिए शाम को जाएंगे तुम्हारे साथ, अन्वय ने सहजता से जवाब दिया। पर उसका जवाब सुनकर आन्या थोड़ी उदास हो गई और उसके सीने से जा लगी। अन्वय ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह शिखर जी और अन्वय सुबह सुबह ही मीटिंग के लिए चले गए, जिसमें दोपहर हो गई। सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भी मीटिंग में भाग लिया। सबके सामने ये नियम बनाया गया कि वे इंसानों की दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्हें अपनी दुनिया में रहने देंगे, उनका शिकार नहीं करेंगे। सभी इस बात से और शांति से जीने के लिए तैयार हो गए। सबकी सहमति से शिखर जी को अध्यक्ष बनाया गया। अन्वय ने अभी किसी भी पद को संभालने से मना कर दिया। जीवन को सहायक पद पर मनोनीत किया गया और बाकी के विश्वास पात्र लोगों को बाकी के पद सौंपने का फैसला लिया गया। इसके लिए विशाल जश्न का आयोजन किया गया, जो आज रात ही रखा गया। वहाँ से फ्री होकर अन्वय अपने भैया के घर के लिए निकल गया। उसने उनसे पहले ही बात कर ली थी, इसलिए वे घर पर ही थे। अन्वय ने डोरबेल बजाई तो माधुरी जी ने आकर दरवाजा खोला और उसे सामने देखते ही भड़कते हुए बोली, अब यहाँ क्या लेने आए हो? अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। उनकी बात सुनकर अन्वय ने आराम से जवाब दिया, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मुझे भैया से कुछ बात करनी है। अरे अन्वय, तुम आ गए, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मदन जी उसकी आवाज़ सुनकर उस तरफ आ गए। उनकी बात सुनकर माधुरी जी गुस्से में कुछ कहने को हुई, पर उन्होंने पहले ही आदेश देते हुए कहा, मेरा भाई अपने भैया से मिलने आया है, जितना हक मेरा है इस घर पर उतना उसका भी है, इसलिए तुम्हें या किसी और को उसे यहाँ से भगाने का कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हारे रोज रोज के तानों से परेशान होकर अपने भाई को यहाँ से खुद से दूर जाने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। वो कल भी मेरा भाई था, आज भी है और हमेशा रहेगा, उसे हक है, जब चाहे यहाँ आ सकता है। अगर तुम्हें मेरे भाई का मुझसे मिलना पसंद नहीं तो अंदर कमरे में जा सकती हो, वैसे भी मुझे अन्वय से अकेले में बात करनी है। उनकी बात सुनकर माधुरी ने गुस्से में पुकारते हुए वहाँ से चली गई। मदन जी ने अन्वय को अंदर बुलाया, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? मदन जी ने उसके सामने बैठते हुए कहा, मुझे शादी करनी है आन्या से, और मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ पापा के साथ आप भी आज शाम मेरे साथ उसके घर चलें, क्योंकि भले ही मुझे जन्म उन्होंने दिया है पर पाला आपने है, तो आपका भी मुझ पर उतना ही हक है जितना उनका है। आपके बिना मेरी कोई भी खुशी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज भी हमारे साथ आन्या के घर चलें, उसके मम्मी पापा से बात करने। अन्वय ने बिना किसी लाग लपेट के सपाट लहजे में उन्हें अपनी बात बता दी। वे पहले से अन्वय की असलियत जानते थे, इसलिए उन्हें उसके मम्मी पापा का जिक्र सुनकर ताज्जुब नहीं हुआ, बल्कि उसकी बात सुनकर वे खुश हो गए और बड़ी आसानी से सहमति जाहिर कर दी। अन्वय कुछ देर वहीं रुका फिर चला गया, क्योंकि कुछ देर उसको आन्या के साथ भी रहना था।